आज है 19 सितंबर दिन बुधवार। श्रोताओं को राजेश जोशी का नमस्कार। तीन तलाक को अध्यादेश के जरिए अपराध घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस से सवाल किए।
सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा मुलतवी हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनावों में दक्षिणपंथी उम्मीदवार को भारी समर्थन, पर आगे क्या होगा?
जो गरीब हैं, गांव के लोग हैं, काले हैं, महिला हैं, इंडिजिनस है, इनको कुछ पूछने वाले नहीं अगले 5-7 साल।
और हिंदी कवि विष्णु खरे का दिल्ली में निधन।
वहाँ कई जगह लिखा भी था कि हिंदी की 95-96% कविता वामपंथी है।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तीन तलाक देने पर अब 3 साल कैद की सजा का प्रावधान हो गया है। सरकार इसी साल मानसून सत्र में तीन तलाक बिल को पेश करना चाहती थी, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से इस बिल को अगले सत्र के लिए टाल दिया गया था। अब इस पर अध्यादेश आने के बाद शीतकालीन सत्र में इसे पास करवाना आवश्यक होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में असम राज्य में जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC में नहीं आए थे, उन्हें अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने की इजाज़त दे दी है। पूरी जानकारी के साथ BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिन 40 लाख लोगों के नाम जुलाई 30 को जारी हुई NRC सूची से गायब थे, उन्हें एक दूसरा मौका दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अगले 60 दिनों तक चलेगी। कोर्ट ने कहा है कि NRC ड्राफ्ट से बाहर बचे नागरिक 15 दस्तावेजों में से अब 10 दस्तावेज दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ भी किया है कि अगर दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो यह जरूरी नहीं कि उस नागरिक को दूसरा मौका दिया जाए। हालांकि अदालत ने जो किया है कुछ वैसा ही सरकार ने तब भी कहा था जब लाखों लोगों का नाम इस सूची में नहीं आया था।
ये थे BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर की सजा को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने उन्हें एवन फील्ड रेफरेंस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नवाज शरीफ के समर्थक जश्न मनाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की है कि अगर कोई भी व्यक्ति खाने के पदार्थों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने यह घोषणा उस जांच के बाद की है जिसमें स्ट्रॉबेरी के अंदर सुई पाई गई थी। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस तरह के कृत्य में शामिल व्यक्ति को अब 15 साल जेल की सजा भुगतनी होगी। स्कॉट मॉरिसन ने कहा,
इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट फनी, You're putting the livelihoods of hardworking...
यह कोई हंसी मजाक नहीं है। आप मेहनतकश ऑस्ट्रेलिया वासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने काम से बच्चों को डरा रहे हैं। आप बुजदिल हैं, और अगर आप हमारे देश में यह करेंगे तो हम आपका पीछा करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा है कि उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन अपनी प्रमुख न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट और लॉन्च साइट को बंद करने के लिए तैयार हो गए हैं। मून ने कहा है कि प्योंगयांग में हुई बैठक के बाद दोनों नेता परमाणु निरस्त्रीकरण करने के एक तरीके पर सहमत हुए हैं। किम जोंग उन ने मून जे इन के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके अंतर्गत वे कुछ विशेषज्ञों की निगरानी में अपनी न्यूक्लियर साइट को बंद करेंगे। मलेशिया की कैबिनेट अपने देश में वोट देने की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने जा रही है। मलेशिया के युवा एवं खेल मामलों के मंत्री ने कहा है कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर संविधान में इस संशोधन को करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि अगले आम चुनाव से पहले वे सुनिश्चित करना चाहेंगे कि 18 वर्ष के युवा भी वोट दे सकें। म्यांमार में एक पत्रकार को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर देश के नेता आंग सांग सू की के बारे में फेसबुक पर नकारात्मक टिप्पणी करने के आरोप हैं। यंगून में पश्चिमी जिले की एक अदालत ने पत्रकार गार मीन वी को सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का दोषी पाया है। कई लाख डॉलर की कीमत वाली ऑनलाइन पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाने के आरोप में कंबोडिया से गिरफ्तार किए गए 18 लोगों को आज चीन लाया गया। इसी साल अप्रैल महीने में चीन की पुलिस ने मैक्स नामक एक मोबाइल फोन ऐप चलाने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस ऐप के जरिए पोर्न वीडियो देखे जाते थे। इसी मामले में और गहराई से जांच करने पर पुलिस को इसके मास्टरमाइंड के बारे में पता चला, जो कंबोडिया में थे। इसके बाद चीन की पुलिस ने कंबोडिया पुलिस की मदद से इन्हें हिरासत में लिया। चीन में पोर्नोग्राफी गैरकानूनी है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूँ राजेश जोशी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश के जरिए तीन तलाक को अपराध घोषित करने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई। इसके साथ ही तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक देने वाले मुसलमानों को 3 साल की कैद हो सकती है। मानसून सत्र में सरकार इस कानून को राज्यसभा में नहीं ला पाई थी। आज सरकार ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में साथ नहीं दिया, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा। नवीन नेगी की रिपोर्ट।
दरअसल राज्यसभा में 3 तलाक बिल के पेश नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आई है। इस साल मानसून सत्र में मोदी सरकार इस बिल को राज्यसभा में पेश करना चाहती थी, लेकिन वहां पूर्ण बहुमत नहीं होने के चलते यह बिल ऊपरी सदन में पेश नहीं किया जा सका। अध्यादेश लाने के बाद अब इस बिल को शीतकालीन सत्र में सदन में पास करवाना आवश्यक होगा। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर इस बिल में देरी करवाने का आरोप लगाया।
वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी 3 तलाक चलता है और खामोश रहती है।
इस अध्यादेश के अनुसार अगर किसी महिला को कोई पुरुष 3 तलाक देता है और वह महिला खुद या उनका कोई रिश्तेदार इसकी शिकायत दर्ज करवाता है, तब 3 तलाक देने वाले पुरुष पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर दोनों ही पक्ष इस मामले में आपसी समझौता कर लेते हैं और महिला मजिस्ट्रेट के पास इसकी जानकारी दे देती है, तो पुरुष पर लगा आरोप हटा भी लिया जाएगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अभियुक्त को जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसमें महिला की मंजूरी आवश्यक होगी। 3 तलाक से जुड़े इस अध्यादेश के अनुसार बच्चे की कस्टडी महिला को दी जाएगी। इसके अलावा महिला और बच्चे के गुजारे के लिए कुछ तय रकम भी मुहैया करवाई जाएगी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाली समीना बेगम ने इस अध्यादेश पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले संसद सत्र में यह बिल जरूर पास हो जाएगा।
आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है और मुस्लिम महिलाओं की असलियत में सच माने तो आज आजादी हुई है 3 तलाक से, वरना तो इतना डर के साए में जीती थी, दहशत थी, सेना वालों का वहां 3 तलाक हो जाए और हम घर से बाहर चले आए।
बिल में देरी के लिए एक तरफ बीजेपी जहां कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का कहना है कि बीजेपी देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस अध्यादेश को लेकर आई है।
मेरे कहने का सीधा सीधा यह मतलब है कि मोदी जी के जो फेलियर है, जो भ्रष्टाचार है जिसमें व्यक्तिगत रूप से वो इन्वॉल्व है, इन पर चर्चा देश में नहीं हो, इसी भावनात्मक मुद्दे पे चर्चा हो जिससे उनके जो फेलियर्स हैं, उनके जो करप्शन के चार्जेस हैं वो छुपे रह जाए, उन पर देश का ध्यान न जाए।
3 तलाक बिल को कैबिनेट ने पिछले साल लोकसभा में पारित करवा लिया था। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन कर इसे मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन इस बिल पर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से इसे अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे चुकी है। नवीन नेगी, BBC, दिल्ली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन के अंतिम दिन सम्मेलन में शामिल लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने साफ कहा कि संघ आरक्षण के पक्ष में है।
सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। आरक्षण कब तक चलेगा इसका निर्णय जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वही करेंगे। उनको जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको, तो फिर वो देखेंगे।
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने लिंचिंग और धर्म परिवर्तन पर भी अपने विचार रखे।
गाय का क्यों किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत। देहरादून के एक निजी बोर्डिंग स्कूल में कक्षा दस की एक नाबालिग छात्रा के साथ 1 महीने पहले हुए सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। बलात्कार के आरोपी इसी स्कूल में पढ़ने वाले 4 नाबालिग छात्र हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है, जिस वजह से ये मामला अब तक जानकारी में नहीं आ पाया था। पुलिस ने इस मामले में 4 छात्रों के साथ ही स्कूल प्रबंधन के भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड से रोहित जोशी की रिपोर्ट।
प्रसाद का मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद
स्कूल की मान्यता रद्द करो
रद्द करो रद्द करो
स्कूल की मान्यता रद्द करो
रद्द करो रद्द करो
स्कूल प्रशासन होश में आओ
होश में आओ
स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर नारेबाजी की आवाजें देहरादून के जीआरडी वर्ल्ड स्कूल के बाहर अभिभावकों और स्थानीय लोगों की हैं। इस स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के ही चार लड़कों ने 14 अगस्त को कथित तौर पर गैंगरेप किया था। देहरादून में सहसपुर थाना क्षेत्र के SHO नरेश सिंह राठौर ने पत्रकारों को बताया।
SSP महोदय को एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना क्षेत्र में एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे 10th की एक छात्रा है, था उसके साथ उसी के कॉलेज के चार लड़कों ने जबरदस्ती बलात्कार किया। और जब उसने इस लड़की ने इस बात की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी तो कॉलेज प्रशासन ने उल्टा उस लड़की को दबाव बनाया कि वो इस बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र ना करे।
पुलिस का कहना है कि इस गैंगरेप की घटना के बारे में स्कूल प्रशासन को पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने मामले को दबाने की कोशिश की। यहां तक कि इस छात्रा के गर्भवती हो जाने के बाद उसका गर्भपात कराने का भी प्रयास किया गया।
संबंध में फिर हमारे द्वारा लड़की के परिजनों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज द्वारा उनको झूठ बताया गया और ये कहा गया कि बच्ची के पेट में दर्द है और उसकी दवाई दिलाने लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने 9 लोगों के खिलाफ यहाँ पे थाने पे नामजद रिपोर्ट दी, जिसपे 376D, 120B और 201 IPC और पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया।
घटना की जानकारी के बाद उत्तराखंड के बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी के नेतृत्व में एक टीम ने स्कूल का दौरा कर पीड़ित छात्रा से बात की। उषा नेगी ने BBC को बताया कि स्कूल प्रशासन ने इस मामले में आपराधिक रवैया अपनाया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये अभी हमने महानिदेशक को लिखा है कि आप तुरंत की NOC को निरस्त करें और स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करने की संबंधित विभाग शिक्षा विभाग को भी अपने इनके बारे में सब कुछ बताते हुए इनके पूरे पेपर्स भेजें ताकि कम से कम इन पे कार्रवाई हो।
इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपी छात्रों के साथ ही स्कूल के निदेशक और प्रधानाचार्य समेत 5 अधिकारियों को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्योंकि स्कूल के सीनियर स्टाफ को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कई बार संपर्क करने की कोशिशों के बाद भी स्कूल में मौजूद स्टाफ इस वाकये पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
यह थी रोहित जोशी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरियम नवाज की सजा को एक अदालत ने मुलतवी कर दिया है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा अभी काट रही हैं। मैंने इस्लामाबाद में BBC उर्दू के हारून रशीद से पूछा कि नवाज शरीफ अब जेल से कब लौटेंगे।
देखें, अदालत ने उन्हें 5-5 लाख रुपए के मचल के जो श्योरिटी बॉन्ड हैं वो जमा कराने के लिए कहा है, जो कि अभी जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने फौरन जमा करवा दिए हैं। तो कोशिश उनकी तो यही है कि आज ही शाम से पहले पहले उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए, लेकिन लगता मुश्किल है। पाकिस्तान में जिस तरह का ब्यूरोक्रेटिक तरीका है उसमें ज़रा शायद टाइम लग सके। और फिर कल और परसों पाकिस्तान में 2 मुहर्रम की छुट्टियां हैं स्टेट के लेवल पे, तो देखना यही होगा कि वो आज इनको रिहा करवा पाते हैं या नहीं, या फिर कल इनकी रिहाई मुमकिन होती है। लेकिन अगले 24 घंटे में यकीनन उनको कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द अब जेल से रिहाई दिलवा दें।
लेकिन ये भी बताइए कि ये सब हुआ कैसे, जब आपके यहाँ चुनाव हुए थे पाकिस्तान में उससे पहले वो अंदर कर दिए गए और चुनाव में उनकी कोई भागीदारी नहीं।
देखें, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये आज के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इन इंतखाबात से, चुनाव से दूर रखने की ये कोशिश थी और ज़बरदस्ती एहतसाब अदालत जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उनसे एक कमज़ोर सा फैसला करवाया गया, जो अब जब हाई कोर्ट में आया तो वो स्टैंड नहीं कर सका अपने पाँव पर। और जो अदालत के 2 जज हैं उन्होंने बार बार यही जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है NAB जो इस केस को लेकर आगे बढ़ रहा था इनके खिलाफ, उनसे बार बार पूछ रहा था कि आप सबूत लेके आएं, आप मफरूजों पे या थ्योरीज पे बात ना करें। तो वो शायद उसके वजह से जो फैसला उस वक्त जल्दी में करवाया गया और जिस तरह का था और जितना कमज़ोर था, लगता यही था कि आज इनको रिलीफ मिल जाएगी। जो सरकार है उन्होंने कहा हम अदालत का फैसला मानते हैं, लेकिन जो लूटी हुई सरकारी दौलत है वो वापस लेना उनका हक है और वो इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। اور آگے بائی الیکشنز آ رہے ہیں جن عام انتخابات میں چناؤ میں مشکل ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اس فیصلے سے پازیٹیو اثر ہو مسلم لیگ نون کا بائی الیکشنز میں جو اکتوبر میں ہونے والے ہیں.
لیکن کیا نواز شریف خود تو نہیں لڑ پائیں گے؟
جب فائنل ججمنٹ آئے گی تو ان کا معلوم ہو سکے گا کہ وہ لڑ سکیں گے یا نہیں. لیکن اگر مسلم لیگ نون چاہے اور ان پر سے پابندیاں ختم ہو جائیں تو وہ دوبارہ کوئی سیٹ خالی کروا کے بھی ان کو قومی اسمبلی پہنچا سکتے ہیں.
اسلام آباد سے یہ تھے ہارون رشید. ہندی کوی اور ساہتیکار وشنو کھرے کا آج نئی دلی میں دیہانت ہو گیا. وہ 78 ورش کے تھے. انہیں ویوستھا ویرودھی کویتاؤں اور بے باک بیانوں کے لیے جانا جاتا تھا. وشنو کھرے کو کچھ دن پہلے برین ہیمریج ہوا تھا جس کے بعد آج انہوں نے پراڑ دیا گئے. میں نے ہندی کوی منگلیش ڈبرال سے وشنو کھرے کے کرتتو کے بارے میں بات کی.
آج سے کئی ورش پہلے انہوں نے ان کی جو دو تین کویتائیں تھیں ٹیبل اور دوست اور چڑیوں کی مرتیو, اس طرح کویتاؤں سے انہوں نے ہندی کویتا کے سوبھاؤ کو اور اس کی سنرچنا دونوں کو بدلنے کا کام کیا. اور ہندی کویتا اس کے بعد ویسی نہیں رہی گئی جیسی پہلے تھی. وہ انہوں نے بہت جوکھم اٹھاتے ہوئے اس کے سوروپ کو گدیاتمک بنا دیا اور وہ ایک نبندھ کی طرح کہیں کہ نبندھ کی طرح ان کی کویتائیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری بھاونا کام کرتی ہے.
ایک چون کی کویتاؤں میں انسان کی بڑھتی کرورتا یا ستا ملتے ہی جو انسان میں کرورتا آ جاتی ہے, پولیس ہو اس کی کرورتا کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں.
جی ہاں جی ہاں.
تو ان کی اپنی ساہتیہ کی راجنیتی پر کچھ پرکاش ڈالیے.
دیکھیے ان کی ساہتیہ کی راجنیتی تو وامپنتھی راجنیتی ہی تھی, اور انہوں نے کئی جگہ لکھا بھی تھا کہ ہندی کی 95-96% کویتا وامپنتھی ہے, اور وہ ہمیشہ وامپنتھ سے پرتیبدھ رہے بھلے ہی وہ کسی پارٹی میں نہیں رہے ہوں.
آپ اگر ان کی کویتا کے پاٹھک کے طور پہ ہم سے بات کریں تو کیا کہیں گے؟
ہاں, ان کی کویتا خود جو ہے وہ خود میں ایک بڑا جوکھم اٹھاتی ہے اور خود میں وہ کچھ چنوتی پیش کرتی ہے. تو وہ پاٹھک کے سامنے بھی چنوتی پیش کرتی ہے, جیسے مکتی بودھ کی کویتا بھی کرتی ہے چنوتی پیش. مثلاً ان کی ایک کویتا لالٹین جلانا, وہ لالٹین جلانے کے بارے میں بہت لمبی کویتا ہے اور بڑی بڑی سامان باتیں اس میں, لالٹین جلانا ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ انت میں ایک جیون کی روپک کے طور پر آپ کے سامنے آتی ہے.
وشنو کھرے کو اپنی بے باکی کے لیے بھی جانا جاتا تھا. جب پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کی تعریف کے پل باد رہے تھے لوگ ستا کے بھیتر اور ستا کے باہر, اس وقت وشنو کھرے نے کہا تھا کہ ایسے کوی قصبے میں بہت سارے ملتے ہیں. مولتہ انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کی کویتاؤں کو خارج کر دیا تھا.
مجھے نہیں لگتا ہے کویتا کے لحاظ سے اٹل بہاری واجپئی کا کوئی یوگدان ہے, محض تک بندیاں ہیں. اس طرح کی تک بندیوں کو وشنو کھرے جیسی اونچی سمویدنا اور اتنا ادھک اونچی سمویدنا والے اور اتنے پڑھے لکھے کوی تو کبھی پسند نہیں آ سکتی تھی اس طرح کی کویتا. تو ان کے لیے اس بات کا کوئی مہتو نہیں تھا کہ اٹل بہاری واجپئی ستا میں ہے یا نہیں ہے, اور ان کی کویتا ہمیشہ ویوستھا ورودھی رہی اور وہ خود ویوستھا ورودھی رہے. دراصل وشنو کھرے جس پرمپرا کے کوی تھے وہ کبھی نرالا مکتی بودھ کی پرمپرا ہے. وشنو کھرے ایک طرح سے ہندی کے آخری مورتی بھنجک تھے.
ہندی کے آخری مورتی بھنجک کبھی وشنو کھرے نہیں رہے. جانکاری دے رہے تھے منگلیش ڈبرال. اور اب وقت ہے دنیا جہان کا. لاطینی امریکی دیش برازیل میں ان دنوں اگلے مہینے ہونے جا رہے چناؤں کے لیے پرچار ابھیان زوروں پر ہے. سبھی پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ گمبھیر آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے دیش کو وہ ہی سنبھال سکتی ہیں, مگر خبروں میں سب سے زیادہ چرچا راشٹرپتی پد کے لیے ایک دکشن پنتھی امیدوار زائر بولسونارو کی ہو رہی ہے. خاص بات یہ ہے کہ وہ تیزی سے لوک پریہ بھی ہو رہے ہیں. دنیا جہان میں آدرش راٹھور سے سنیے کہ برازیل میں کیسے دکشن پنتھی راجنیتی ابھر رہی ہے.
دنیا جہاں. برازیل کھیترفل کے حساب سے دنیا کا پانچواں سب سے بڑا اور آبادی کے حساب سے چھٹا سب سے بڑا دیش ہے. یہ وشال لوکتانترک دیش جیوک اور بھوگولک وویدھتاؤں سے بھرا ہوا ہے, مگر ان دنوں پوری دنیا کی نگاہیں اس دیش پر ٹکی ہوئی ہیں. پریاورن کے لیے بے حد مہتو رکھنے والے ایمیزون کے ورشا ونوں میں پیڑوں کا اندھا دھند کٹان ہی نہیں بلکہ اس دیش کے راجنیتک اور آرتھک حالات بھی دنیا کے لیے چنتا کا سبب بنے ہوئے ہیں. ایک سمے تیز رفتار سے آرتھک ترقی کر رہا یہ دیش آج کل بری طرح لڑکھڑا رہا ہے۔ ایسے میں یہاں ہونے جا رہے چناؤں سے لوگوں کو بہت امیدیں ہیں۔ برازیل میں پچھلے راشٹرپتی چناؤ سال 2014 میں ہوئے تھے، جس میں ورکرز پارٹی کی ڈلما روسیف نے برازیلین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو ہرایا تھا۔ روسیف سے پہلے انہی کی پارٹی کے لولا ڈیسلوا 2003 سے 2011 تک برازیل کے راشٹرپتی رہے تھے، مگر دوسری بار جیت کر راشٹرپتی بنی ڈلما روسیف کو 2016 میں مہابھیوگ کے کارن ہٹا دیا گیا تھا۔ برازیل میں موجود ورشٹھ پترکار شوبھن سکسینا بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا کرم کے بعد برازیل میں سنکٹ پیدا ہو گیا تھا۔
برازیل میں بہت سارے پردرشن ہوئے بھرشٹاچار کے خلاف، بہت سارے پردرشنوں کے بعد ڈلما روسیف کا امپیچمنٹ ہوا، لیکن جہاں تک ان کا سوال ہے، وہ ایک بہت ہی صاف ستھری امیج کی نیتا ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی بھرشٹاچار کا مقابلہ نہیں تھا، لیکن ان کے باوجود ان کا امپیچمنٹ ہو گیا اور ارتھ ویوستھا جو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی آگے وہ نیگیٹو میں چلی گئی۔
آج برازیل میں حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ بے روزگاری بے تحاشا بڑھ گئی ہے۔ برازیل نے پچھلے 100 سالوں میں کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے، لیکن جے این یو کے پروفیسر ڈاکٹر عبد النفع بتاتے ہیں کہ ارتھ ویوستھا کے علاوہ برازیل میں اور بھی مدے ہیں جو بے حد گمبھیر ہیں۔
کرپشن برازیل میں مطلب سمجھ لیجئے کہ آسمان کو چھو چکا ہے۔ دوسرا ایشو ہے وائلنس۔ برازیل میں اس قدر وائلنس ہے، 60-64 ہزار لوگ ہر سال مارے جا رہے ہیں وائلنس کے اندر۔ اتنا وائلنس تو ان دیشوں میں ہوتا ہے جہاں وار چل رہی ہو۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے، برازیل میں نفرت بڑی پھیل گئی۔ صحیح بات ہے، اگر آپ بلیک ہیں، اگر آپ آدیواسی ہیں، اگر آپ مہیلا ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایک ریلا سا نکل کر آیا ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے یہ اندر دل کے اندر غبار تھا پورے دیش کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ وام پنتھی کہتے ہیں خود کو، یا کوئی آپ کو وام پنتھی کہتا ہے، تو آج کے سمے میں برازیل میں سب سے بڑی گالی مانی جاتی ہے۔
برازیل میں ہنسا کے چلن کی بات کریں تو چناؤ بھی اس سے اچھوتے نہیں رہے۔ سوشل لبرل پارٹی یعنی پی ایس ایل کے راشٹرپتی پد کے امیدوار شائل بولسنارو پر کچھ ہی دن پہلے چناؤ پرچار کے دوران ایک شخص نے چاقو سے وار کر دیا۔ وہ اسپتال میں ہیں جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے، لیکن بولسنارو پر خود ہنسا اور نفرت کو بڑھاوا دینے کے آروپ لگتے رہتے ہیں۔ ورشٹھ پترکار شوبھن سکسینا بتاتے ہیں کہ پولیس کے مطابق جس شخص نے بولسنارو پر حملہ کیا وہ ان کی باتوں سے ناراض تھا۔
بولسنارو کی جو بھاشن دیتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے۔ انہوں نے جو دیش کے بلیک لوگ ہیں، جو افریقن مول کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کافی بولا ہے۔ جو گے اور لیزبین ان کے خلاف کافی بولتے ہیں۔ جو وامپنتھی لوگ ہیں ان کے کافی خلاف بولتے ہیں۔ وہ اس بات کرتے ہیں کہ جب وہ اگر وہ برازیل کے راشٹرپتی بنے تو سبھی ناگرکوں کو وہ ہتھیار دے دیں گے کہ سب ناگرک اپنے آپ کو سرکشا کر سائیں۔ تو اس ویکتی کے جو لوائنس، ان کا کہنا ہے کہ وہ بولسنارو کی اس طرح کی بھاشن بازی سے بہت ناراض تھا، کیونکہ یہ ویکتی غریب آدمی ہے اور افریقن ملک کا ہے، اور اسی بات سے ناراض ہو کے اس نے بولسنارو پہ حملہ کیا۔
برازیل بہت سانسکرتک دیش ہے۔ یہاں پر مول نواسی، افریقی غلاموں کے ونشج اور یوروپ سے آ کر بسے لوگ رہتے ہیں، لیکن راشٹرپتی چناؤ کے اوپینین پولز میں فی الحال سب سے آگے چل رہے پی ایس ایل کے شائر بولسنارو مول نواسیوں، کالے لوگوں اور مہیلاؤں کے خلاف آکرامک بھاشن دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد النفع مانتے ہیں کہ اسی کارن بولسنارو کو تیزی سے لوک پریتا بھی ملی۔
وہ تو صاف کہتے ہیں کہ جو انڈیجینس ہیں، یہ جس طرح کے مہیلائیں ہیں، یہ وائلنس ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں برازیل کی جو سمسیا ہے وہ وائلنس سے دور ہوگی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح سے وہ جو مشکل ایشوز ہیں، جو سمسیاں بہت جٹیل ہیں، ان کے آسان حل دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی پاپولرٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ اور اب یہ ان پر حملہ ہوا تو اس سے ان کی پاپولرٹی اور بڑھ گئی ہے۔
برازیل کے لوک تنتر کو زیادہ مضبوط نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ 1964 سے لے کر 1985 تک یہاں پر سینا کا شاسن رہا تھا۔ جے این یو کے پروفیسر ڈاکٹر عبد النفع بتاتے ہیں کہ یہ چناؤ کافی اہم ہے، کیونکہ وچارک مان رہے ہیں کہ برازیل میں سمرستا اور وکاس کا ماحول پورو راشٹرپتی لولا ڈی سلوا کے سمے تھا وہ بدل گیا ہے، اور اگر ایسا ہی جاری رہا تو اور بھی بہت کچھ بدل جائے گا۔
برازیل میں جتنے بھی سارے سماجک نیائے کے پروگرام تھے، غریبوں کو مدد دینے کے پروگرام تھے، ان کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ سماج میں ذرا سی جو تھوڑی سی آپ کے یہاں سہولت آئی تھی، تھوڑا سا एक सामाजिक व्यवस्था बनने लगी थी, प्रेसिडेंट तैमर ने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आएगा वो विदेश नीति में आएगा। लूला और डिल्मा रोसेफ के बीच में ब्राजील की विदेश नीति में साउथ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर ज्यादा जोर था। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील रशिया चाइना साउथ अफ्रीका, इप्सा और ब्रिक्स टाइप की ग्रुपिंग में ब्राजील की विदेश नीति काफी एक्टिव थी और वो खत्म हो जाएगी। विदेश नीति में खासे परिवर्तन आएंगे और देश के अंदर जो है जो गरीब हैं, गांव के लोग हैं, काले हैं, महिलाएं हैं, इंडिजिनस है, इनको कोई पूछने वाले नहीं अगले 5-7 साल।
वर्कर्स पार्टी के लूला दा सिल्वा 2003 से 2011 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने उस वक्त पद छोड़ा था जब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, मगर हाल ही में उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला और 9 साल की सजा सुना दी गई। इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन फिर भी वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। मगर वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि लूला दा सिल्वा की वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार हमदाद कड़ी टक्कर दे सकते हैं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी। लूला ने फर्नांडो हदाद को घोषित किया है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वो साओ पाउलो के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने साओ पाउलो में बहुत अच्छा काम किया है, पूरी तरह से शहर को बदल दिया है। उससे पहले वो विदेश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और अभी तक जो रुझान लग रहा है ये उम्मीद है कि वो दूसरे राउंड में जाएंगे और दूसरे राउंड में फिर उनको जायर बोल्सोनारो से या जेराल्डो अक्मे से एक कला मुकाबला करना पड़ेगा।
7 अक्टूबर को ब्राजील में 16 साल या इससे अधिक उम्र के 14 करोड़ लोग अलग अलग स्तर के 5 प्रतिनिधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोट दे पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मंदी, हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। लेकिन नए प्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं, इसके लिए ब्राजील की जनता को इंतजार करना होगा। उम्मीद है दुनिया जहान का ये अंक आपको पसंद आया होगा, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। लेकिन फिलहाल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। ये सीधे चलते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां बीबीसी उर्दू के अब्दुल रशीद शकूर मौजूद हैं, मैच देख रहे हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, तैयार हैं बताने के लिए। अब्दुल रशीद शकूर, क्या देख रहे हैं आप?
जी, इस वक्त भारत की पोजीशन खासी स्ट्रांग है। भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है और पाकिस्तान की अभी इस वक्त 8वीं विकेट गिरी है। स्कोर है इसका 158 158। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो आज बुरी तरह नाकाम हुई है और भारत की जो बॉलिंग है उसने पाकिस्तान की बैटिंग को काबू में कर लिया है।
अब्दुल रशीद शकूर साहब, एक जब मैं बहुत ये कार्यक्रम तैयार कर रहा था, एक जो गेंद लपकी, जो कैच लिया, उसका बड़ा जिक्र हो रहा था, बहुत शोर सुन रहा था, वो क्या था?
जी, वो जो सब्स्टिट्यूट फील्डर हैं मनीष पांडे, उन्होंने कैच लिया कप्तान सरफराज का और वो गेंद जब हवा में थी तो उसकी तरफ वो बढ़े हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाहर छक्के को उन्होंने जो है वो कैच में, जिसको हम कहते हैं, तब्दील किया। और तमाम जो यहाँ पे जो स्टेडियम में जो दर्शक बैठे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा यानी सरप्राइज और अच्छी चीज थी जो देखने को मिली। जो इस तरह की चीजें, क्योंकि T20 क्रिकेट के आने के बाद फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई हुआ है, खिलाड़ियों की जो फिटनेस है, तो ये सारी कमाल होते हैं। जो कैचेस के इस तरह के जो कैचेस होते हैं वो फिटनेस में उसमें बड़ा दखल होता है, तो यही चीज जो है आज यहाँ पे नजर आई है। भारतीय फील्डिंग भी अच्छी रही है, भारतीय बॉलिंग बहुत जबरदस्त स्ट्राइक बॉलिंग की है और पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो शुरू से ही जो है वो मुश्किल की हुई है।
अभी ताजा स्कोर बताइए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए कि इस वक्त क्या स्कोर है आपकी नजर में?
जी 159 स्कोर है 159 और आउट हो गए। मोहम्मद आमिर इस वक्त क्रीज पर है और हसन अली अब बैटिंग करने आए हैं, सईद मुशरफ की विकेट गिरने के बाद 21 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बाबर आजम ने 47 खेले हैं और शुएब मलिक उन्होंने 43 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा जो है वो बैटिंग है वो बिल्कुल नाकाम रही। अमुल हक 2 रन बनाकर और फखर जमान जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी स्कोर की थी वो 0 पर आउट हुए।
मोहम्मद रशीद
शकूर साहब, माफ कीजिएगा, अब्दुल रशीद शकूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फोन लाइन थोड़ा सा गड़बड़ थी, इसलिए हम श्रोताओं से क्षमा मांगते हैं। फिलहाल खबरों का अब समय नहीं बचा है, इसलिए चलते चलते मैं राजेश जोशी आप सभी से अनुमति चाहता हूं। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।